दानियल की पुस्तक संख्या 197 भविष्यवाणी का अनावरण। मसीह का दूसरा एकत्रीकरण और प्रकटीकरण के वृत्तांत में इस्लाम की अंतकालिक भूमिका।
अब हम ये पहचान रहे हैं कि सात गर्जनों द्वारा निरूपित घटनाओं में से एक घटना ये है कि मसीह अपने लोगों को दूसरी बार एकत्र करने का कार्य कर रहा है, जिसे उसने जुलाई 2023 में आरंभ किया। मिलरवादी इतिहास ये पहचानता है कि ये कार्य संदेश की पृष्ठभूमि के रूप में इस्लाम के युद्ध के साथ संपन्न किया जाता है।
ये संदेश यीशु मसीह का प्रकाशन है, जिसे अनुग्रह अवधि के समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है, परंतु वो संदेश तीसरे हाय के संदेश के द्वारा वहन किया जाता है, अर्थात उसके संदर्भ के भीतर रखा गया है। ठीक उसी समय जब 1839 में प्रभु दूसरी बार अपना हाथ बढ़ा रहे थे, सिस्टर व्हाइट क्रोधित राष्ट्रों के कंपन पर टिप्पणी कर रही थी, जो इस्लाम का एक प्रतीक है।
सेक्शन दिसंबर 1828 को प्रभु ने मुझे आकाश की शक्तियों के हिलने का दर्शन कराया। मैंने देखा कि मत्ती, मरकुस और लूका द्वारा लिखे गए चिन्ह बताते समय जब प्रभु ने आकाश कहा तो उनका अर्थ आकाश ही था, और जब उन्होंने पृथ्वी कहा तो उनका अर्थ पृथ्वी ही था। आकाश की शक्तियां सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं। ये आकाश में शासन करते हैं। पृथ्वी की शक्तियां वे हैं जो पृथ्वी पर शासन करती हैं। परमेश्वर की वाणी से आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब सूर्य, चंद्रमा और तारे अपने स्थानों से हटा दिए जाएंगे। वे नष्ट नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर की वाणी से हिला दिए जाएंगे। काले भारी बादल उभर आए और आपस में टकरा गए। आकाशमंडल दो भागों में बैठकर पीछे हट गया। तब हम ओरायन में बने खुले स्थान के माध्यम से ऊपर देख सकते थे, जहां से परमेश्वर का स्वर आया। पवित्र नगर उसी खुले स्थान से नीचे उतरेगा। मैंने देखा कि पृथ्वी की शक्तियां अब हिलाई जा रही हैं और घटनाएं क्रमशः घटती हैं। युद्ध और युद्ध की अफवाहें, तलवार, अकाल और महामारी सबसे पहले पृथ्वी की शक्तियों को झकझोरेंगे, फिर परमेश्वर का स्वर सूर्य, चंद्रमा और तारों को और इस पृथ्वी को भी हिला देगा। मैंने देखा कि यूरोप में शक्तियों का हिलना, जैसा कि कुछ लोग सिखाते हैं, स्वर्ग की शक्तियों का हिलना नहीं है, बल्कि वो क्रोधित राष्ट्रों का हिलना है। प्रारंभिक लेखन 41।
इतिहासकार पुष्टि करते हैं कि 1848 में यूरोप के राष्ट्रों को हिला देने वाली बात इस्लाम की सेनाओं की गतिविधियां थीं, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें उस शक्ति के रूप में प्रतीकित किया गया है जो राष्ट्रों को क्रोधित करती है। 1840 से 1844 के इतिहास में प्रभु द्वारा दूसरी बार अपना हाथ फैलाने के प्रथम साक्ष्य के रूप में आधी रात की पुकार का संदेश एक्सेटर शिविर सभा में पहुंचा। वहां से 22 अक्टूबर 1844 तक वो संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर ज्वार की लहर की तरह छा गया। उस आंदोलन का प्रतिरूप मसीह का यरूशलेम में विजयी प्रवेश था और मसीह को यरूशलेम में ले जाने वाला एक गधा था।
आधी रात की पुकार का संदेश यीशु मसीह के प्रकाशन के समस्त भविष्यद्वाणी संबंधी संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु वो प्रकाशन तीसरे हाय के इस्लाम द्वारा जातियों को क्रोधित किए जाने के संदर्भ में रखा गया है, क्योंकि वही इस्लाम उस संदेश को वहन करता है जो यीशु मसीह का प्रकाशन है। यीशु यहूदा के गोत्र का सींग है और वो गधे के संदेश से बंधा हुआ है।
यहूदा, तू वही है जिसकी प्रशंसा तेरे भाई करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर होगा, तेरे पिता के पुत्र तेरे सामने झुकेंगे। यहूदा सिंह का शावक है, मेरे पुत्र तू शिकार से ऊपर चढ़ाया है। वो झुककर बैठ गया, वो सिंह के समान और बूढ़े सिंह के समान लेट गया, कौन उसे जगाएगा? राजदंड यहूदा से ना हटेगा, न उसके पैरों के बीच से विधिदाता, जब तक कि शिलो न आए और लोगों का इकट्ठा होना उसी के पास होगा। वो अपने बछेड़े को दाखलता से और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम दाखलता से बांधेगा। वो अपने वस्त्र दाख मधु में और अपने कपड़े अंगूर के रक्त में धोएगा। उसकी आंखें दाख मधु से लाल और उसके दांत दूध से उजले होंगे। उत्पत्ति 39:8-12।
यही यहूदा के द्वारा है कि लोगों का एकत्र होना पूरा होता है। मसीह यहूदा के रूप में दाखलता भी है और उत्तम दाखलता गधे के बच्चे से बंधी है। उनके वस्त्र दाखरस में धुले हैं जो अंगूरों का लहू था। मसीह ने गेतसमनी में अपना लहू बहाना आरंभ किया जब उन्होंने रक्त पसीना बहाया, और गेतसमनी का अर्थ जैतून का कोल्हू है। गेतसमनी से लेकर क्रूस तक उन्होंने सब मनुष्यों को अपने पास इकट्ठा करने के लिए अपना अनमोल लहू बहाया।
अब इस संसार का न्याय है, अब इस संसार के प्रधान को बाहर निकाला जाएगा, और मैं, यदि मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊं तो सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा। उसने ये इस बात का संकेत देते हुए कहा कि वो किस प्रकार की मृत्यु मरेगा। यूहन्ना 12:33।
सब लोगों को अपनी ओर खींच लेने का मसीह का कार्य दो चरणीय प्रक्रिया है, क्योंकि वो पहले इज़राइल के बहिष्कृतों को इकट्ठा करता है और फिर अपने दूसरे झुंड को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक ध्वज के रूप में उपयोग करता है।
मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसा पिता मुझे जानता है, वैसे ही मैं भी पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं हैं, उन्हें भी मुझे लाना आवश्यक है, और वे मेरी आवाज़ सुनेंगी, और तब एक ही बाड़ा होगा और एक ही चरवाहा। यूहन्ना 10:14-16।
144,000 वे भेड़े हैं जो उसे जानते हैं, अन्य भेड़े उसका वो झुंड है जो जब उस ध्वज को देखते और सुनते हैं तो बाबुल से बाहर निकल आते हैं। अपने ध्वज जो उसकी ही भेड़े हैं को उठाने से पहले वो पहले उन्हें दूसरी बार एकत्र करता है। पवित्र इतिहास की वो रेखा दानियेल अध्याय 11 के 13 से 15 तक के पदों के साथ मेल खाती है, और इसलिए पद 40 के गुप्त इतिहास के साथ भी संगत है। ये सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग की उस रेखा का प्रतिनिधित्व करती है जो धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सींग के इतिहास, धर्मत्यागी रिपब्लिकन सींग और टैर्की वेश्या के आगमन के भीतर पद 41 के रविवार के कानून से ठीक पहले चलती है। सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग की वो रेखा उस इतिहास और उस संदेश दोनों का प्रतिनिधित्व करती है जहां 144,000 पर मुहर लगाई जाती है।
इसराइल के तिरस्कृत लोग एक ऐसी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ठट्ठा करने वालों की सभा के विपरीत है, जैसा कि यिर्मयाह उन्हें पहचानता है, या शैतान की सभा के रूप में, जैसा कि यूहन्ना उन्हें प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 में पहचानता है, जहां स्मिरना और फिलाडेल्फिया की कलीसियाओं को संबोधित किया गया है। फिलाडेल्फिया के लोग प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं, और स्मिरना उसी अध्याय की बड़ी भीड़ है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अंतिम दिनों में उद्धार पाए हुए दो वर्ग उन लोगों के साथ विवाद में है जो झूठ बोलते हैं, जो शैतान की सभा में हैं, और जो दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की प्रजा है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे यहूदी है। सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग की रेखा उस विवाद से निर्मित है जो उनके और पूर्व वाचा के उन लोगों के बीच मौजूद है जिन्हें तब पीछे छोड़ दिया जा रहा है। उसी इतिहास में विश्वास योग्य लोग पतित प्रोटेस्टेंट वाद और कैथोलिक धर्म की रेखा के साथ भी विवाद में है। वे तीन धार्मिक इकाइयां सच्चे प्रोटेस्टेंट सींग की रेखा के भीतर सूक्ष्म स्तर पर अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करती हैं।
मैंने देखा कि नाममात्र की कलीसिया और नाममात्र के एडवेंटिस्ट यहूदा की तरह हमें कैथोलिकों के हवाले कर देंगे ताकि उनके प्रभाव को प्राप्त कर सत्य के विरोध में आ सकें। तब पवित्र जन एक अल्पज्ञात लोग होंगे जिन्हें कैथोलिक बहुत कम जानते होंगे, परंतु हमारी आस्था और रीति रिवाजों से परिचित कलीसियाएं नाममात्र के एडवेंटिस्ट, क्योंकि वे शब्द के कारण हमसे घृणा करते थे क्योंकि वे उसका खंडन नहीं कर सकते थे, पवित्र जनों के साथ विश्वासघात करेंगे और उन्हें कैथोलिकों के सामने ऐसे लोगों के रूप में पेश करेंगे जो लोगों की संस्थाओं की अवहेलना करते हैं, अर्थात वे सब्त का पालन करते हैं और रविवार की उपेक्षा करते हैं। स्पॉल्डिंग और मैगन 1:2।
हम पहले भी इस अनुच्छेद पर विचार कर चुके हैं, और इस दौरान हमने ये पहचाना कि नाम मात्र की कलीसिया और नाम मात्र का एडवेंटिस्ट जैसे वाक्याशों का, जब सिस्टर व्हाइट ने ये शब्द लिखे थे, अर्थ और प्रयोग अलग थे। फिर भी भविष्यद्वक्ताओं ने अपने इतिहास की अपेक्षा अंतिम दिनों के बारे में अधिक कहा, इसलिए इस अनुच्छेद में अंतिम दिनों की नाम मात्र की कलीसिया से अभिप्राय धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट वाद होगा। नाम मात्र शब्द का अर्थ केवल नाम का होता है। तथा कथित प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने 1844 में रोम का विरोध करना छोड़ दिया जब उसने विश्वास के द्वारा पवित्रतम स्थान में प्रवेश करने के विरुद्ध विद्रोह किया, जहां वो ये पहचान सकती थी कि सातवें दिन का शब्द उपासना का सही दिन है। इसके बजाय उसने सूर्य पूजा को बनाए रखा, जो कैथोलिक धर्म का चिन्ह है। यदि आपने उसके अधिकार के प्रतीक को स्वीकार कर लिया है, जिसे रोमन कलीसिया बार बार इस रूप में पहचानती आई है कि बाइबल में उपासना के दिन को सातवें दिन के सप्त से बदलकर रविवार करने का उसे अधिकार है, तो रोम का विरोध करना, जो प्रोटेस्टेंट शब्द की एकमात्र परिभाषा है, असंभव है। नाम मात्र एडवेंटिस्ट वे हैं जो स्वयं को सेवंथ डे एडवेंटिस्ट होने का दावा करते हैं, पर उन्हें यहूदा के रूप में भी पहचाना गया है, जो उस चेले का प्रतीक है जिसने अपने घोषित विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। नाम मात्र सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया पवित्र जनों से घृणा करेगी और वे पवित्र जन तब अपरिचित लोग हो जाएंगे। वे सबके कारण उन अपरिचित पवित्र जनों से घृणा करते हैं, ऐसा सत्य जिसका वे खंडन नहीं कर सकते। बहन व्हाइट के इतिहास में सबका सत्य सातवें दिन का सप्त था, पर वो अंतिम दिनों के सप्त के सत्य का प्रतिरूप है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, और वही वो सिद्धांत है जिसे 1863 में अपने विद्रोह में लाउदिकियन सेवंथ डे एडवेंटिज्म ने सबसे पहले अस्वीकार किया था। वही सिद्धांत विलियम मिलर द्वारा खोजा गया पहला आधारभूत सत्य था, और वो एडवेंटिज्म की उन आधारभूत सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें चलने से नाम मात्र एडवेंटिस्ट इनकार करते हैं, जैसा कि यिर्मयाह के पुराने मार्गों द्वारा व्यक्त किया गया है। वो सप्त का सत्य लाइव्य व्यवस्था 26 का 7 बार है। फिलाडेल्फिया और स्मिर्ना से बनी सच्चे प्रोटेस्टेंट वाद की रेखा को यहूदा के रूप में निरूपित लोगों द्वारा धोखा दिया जाता है। यहूदा ने यीशु को 3 बार धोखा देने की संधि की। इस प्रकार एक क्रमिक विश्वासघात की पहचान होती है, जो क्रूस से पहले आरंभ हुआ और क्रूस पर समाप्त हुआ। दानियल अध्याय 11 की पद 16 रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका प्रतीक क्रूस था। इसलिए पद 16 के रविवार के कानून तक पहुंचाने वाली पदों से, जो पद 41 के रविवार के कानून के समान ही है, अंतिम दिनों के पवित्र जनों पर 3 चरणीय विश्वासघात लाया जाता है। ये विश्वासघात उस अवधि में होता है जब प्रभु अपने अंतिम दिनों के ध्वज को दूसरी बार इकट्ठा कर रहा होता है,
और उस दिन यशय की जड़ होगी जो लोगों के लिए एक ध्वज के समान खड़ी होगी। अन्य जातियां उसकी खोज करेंगी और उसका विश्राम स्थान महिमामय होगा, और उस दिन ऐसा होगा कि प्रभु दूसरी बार फिर अपना हाथ बढ़ाएगा ताकि अपनी प्रजा के शेष लोगों को जो बचे रह गए होंगे अश्शूर से और मिस्र से और पत्रोस से और कूश से और ईलाम से और शिनार से और हमात से और समुद्र के द्वीपों से वापस ले आए, और वो जातियों के लिए एक ध्वज खड़ा करेगा और इज़राइल के निकाले हुए लोगों को इकट्ठा करेगा और यहूदा के तितर बितर लोगों को पृथ्वी के चारों कोनों से बटोर लाएगा। एप्रैम की ईर्ष्या भी दूर हो जाएगी और यहूदा के शत्रु काट डाले जाएंगे। एप्रैम यहूदा से ईर्ष्या नहीं करेगा और यहूदा एप्रैम को न सताएगा, परंतु वे पश्चिम की ओर पलिश्तियों के कंधों पर टूट पड़ेंगे। वे मिलकर पूर्व वालों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर अपना हाथ डालेंगे और अम्मोन की संतान उनकी आज्ञा मानेगी। यशाया 11:10-14।
यशाया पद 10 में उस दिन इस अभिव्यक्ति के माध्यम से इस अंश का ऐतिहासिक संदर्भ चिह्नित करते हैं। अतः उस दिन की पहचान पद 10 से पहले के पदों में की गई है, जब हम इस विशिष्ट भविष्यवाणी संबंधी कथा को उस संदर्भ तक पीछे ले जाते हैं जो हमें यह पहचानने देता है कि वह दिन कब है। तब हम अध्याय 10 के पहले पद पर पहुंचते हैं।
हाय उन पर जो अन्यायपूर्ण फरमान जारी करते हैं और जो ऐसे अत्याचारी नियम लिखते हैं जिन्हें उन्होंने निर्धारित किया है। यशाया 10:1।
सिस्टर व्हाइट इस पद के अन्यायपूर्ण आदेश को शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के रूप में पहचानती है।
एक मूर्तिपरस्त सप्त स्थापित कर दिया गया है जैसे दूरा के मैदानों में सोने की मूर्ति खड़ी की गई थी और जैसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने ऐसा फरमान जारी किया था कि जो कोई इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा और इसकी उपासना नहीं करेगा उसे मार डाला जाए, वैसे ही एक घोषणा की जाएगी कि जो रविवार की संस्था का आदर नहीं करेंगे उन्हें कारावास और मृत्यु की सजा दी जाएगी। इस प्रकार प्रभु का सप्त पैरों तले रौंदा जाता है, परंतु प्रभु ने घोषित किया है, हाय उन पर जो अन्यायपूर्ण फरमान जारी करते हैं और जो अत्याचार लिखते हैं जिसे उन्होंने ठहराया है। आइजाया 10 बायरा थाना C1 5-18 मैनुस्क्रिप्ट रिलीजर्स खंड रागा 92।
प्रभु के द्वारा अपने लोगों को दूसरी बार एकत्र करने का प्रसंग आने वाले रविवार विधि संकट के इतिहास में स्थापित किया गया है, क्योंकि अध्याय 10 के 12वें पद में यशाया इस विषय में बोलता है कि प्रभु अधार्मिक आज्ञा जो रविवार विधि है पर अपना कार्यकारी न्याय लाने से पहले अपने लोगों के बीच एक कार्य को पूरा करता है।
इसलिए ऐसा होगा कि जब प्रभु सियोन पर्वत और यरूशलेम पर अपना समस्त कार्य पूरा कर चुके होंगे, तब मैं अश्शूर के राजा के घमंडी हृदय के फल को और उसकी ऊंची आंखों की शान को दंड दूंगा। यशाया 10:12।
सियोन और यरूशलेम पर किया जाने वाला कार्य, जिसे प्रभु पापाई सत्ता की सजा का आरंभ, जो रविवार के कानून से शुरू होता है, से पहले करते हैं, वो 144,000 की मुंबई महरबंदी है। हीजकेल अध्याय 9 में लिखने वाले की दवात वाला पुरुष यरूशलेम में घूमता है और उन पर चिह्न लगाता है जो देश में किए जा रहे घृणित कामों के कारण आहे भरते और विलाप करते हैं और कलीसिया में किए जा रहे घृणित कामों के कारण भी। वो कार्य प्रभु द्वारा इज़राइल के निकाले हुए लोगों को दूसरी बार इकट्ठा करने की प्रक्रिया को भी सम्मिलित करता है। वो उन्हें पृथ्वी के चारों कोनों से इकट्ठा करता है और पृथ्वी के चार कोने 8 भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। 8 पशु की प्रतिमा की परीक्षण प्रक्रिया का प्रतीक है। इस प्रकार ये दर्शाता है कि जो ध्वज बनेंगे उनका अंतिम एकत्रीकरण उसी काल में होता है जब पृथ्वी पर पशु की प्रतिमा की परीक्षा संचालित की जा रही होती है। इफ्रैम के रूप में व्यक्त की गई वो एकता कि वो यहूदा से ईर्ष्या न करे और यहूदा इफ्रैम को न सताए, तब घटित होती है जब यहूदा के विरोधी समाप्त कर दिए जाते हैं। भविष्यवाणी की दृष्टि से पूर्व वाचा के लोग, जिन्हें जूडस या शैतान की सभा या उपहास करने वालों की मंडली या मिलेराइट इतिहास के प्रोटेस्टेंट या मसीह के इतिहास के यहूदियों द्वारा दर्शाया गया है, पहली निराशा में काट दिए जाते हैं। जब यिर्मयाह उसी इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे ये निर्देश दिया गया कि वो उपहास करने वालों की मंडली में कभी वापस नहीं जा सकता, यद्यपि यदि वे पश्चाताप करना चुने तो वे उसके पास लौट सकते हैं। 18 जुलाई 2024 से लेकर रवि रॉक के कानों तक प्रभु अपने अंतिम दिनों की प्रजा को दूसरी बार इकट्ठा करता है। वो उन्हें सारे संसार से इकट्ठा करता है उस अवधि में जब वो यहूदा और यरूशलेम पर अपना संपूर्ण कार्य पूरा कर रहा है। उस मुहर लगाने के समय में परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा अल्पज्ञात रहेगी, तथापि उनके कार्य का विरोध करने वाले एक त्रिगठबंधन का उन्हें सामना करना पड़ेगा। कैथोलिक धर्म त्रिगठबंधन का पशु है और उसकी पुत्रियों में से एक वो वर्ग है जिसे बहन व्हाइट नाम मात्र कलीसिया के रूप में पहचानती है। वे झूठे भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नाम मात्र लौदीकिया के एडवेंटिस्ट जिनका प्रतिनिधित्व यहूदा करता है, इस चित्रण में अजगर है। 1833 के विद्रोह का प्रतीक पहले कादेश पर प्राचीन इसराइल का विद्रोह था, जब उन्होंने यहोशू और कालेब का संदेश अस्वीकार कर मिस्र लौटने का निर्णय लिया। मिस्र अजगर का प्रतीक है।
हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर कर और उसके विरुद्ध वरन समस्त मिस्र के विरुद्ध भविष्यद्वाणी कर, बोल और कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, देख हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, उस बड़े अजगर के विरुद्ध जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है और जिसने कहा है, मेरी नदी मेरी अपनी है और मैंने उसे अपने लिए बनाया है। यहेजकेल 29:2-3।
कादेश का विद्रोह उस परीक्षण प्रक्रिया की 10वीं परीक्षा था जिसने मिस्र से निकाले गए
चू ने हुए लोगों की अस्वीकृति और मृत्यु को जन्म दिया और उसने उस अंतिम परीक्षा का प्रतिरूप प्रस्तुत किया जो 22 अक्टूबर 1834 को फिलाडेल्फियन मिलराइट एडवेंटिज्म पर लाई गई परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा थी और 1863 के विद्रोह के साथ समाप्त हुई। प्राचीन इसराइल के इतिहास के बिल्कुल अंत में यहूदी चिल्लाकर बोले, उसे दूर करो, उसे दूर करो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, हमारा कोई राजा नहीं सिवाय कैसर के। प्रथम विद्रोह और अंतिम विद्रोह में पूर्व वाचा के लोगों ने अजगर के प्रतीकों मिस्र और मूर्ति पूजक रोम को अपने राजा के रूप में चुन लिया।
18 जुलाई 2020 को यहूदा के विरोधी काट डाले गए और 144,000 का मंदिर स्थापित किया गया। अब केवल यही शेष रह गया था कि वाचा के दूत के अपने मंदिर में अचानक आने से पहले मंदिर शुद्ध किया जाए। मिलरवादी इतिहास का मंदिर 1798 से 1844 तक 46 वर्षों में निर्मित किया गया था। 19 अप्रैल 1844 की पहली निराशा पर प्रोटेस्टेंट काट डाले गए और शैतान के आराधनालय थट्ठा करने वालों की सभा रोम की एक बेटी का भाग बन गए। उस बिंदु से 22 अक्टूबर 1844 तक एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया घटित हुई। इससे पहले कि विश्वास योग्य लोग मसीह के पीछे पीछे परम पवित्र स्थान में प्रवेश करें ताकि वो उनकी मानवता के साथ अपनी दिव्यता को जोड़ने का कार्य पूरा करे।
सच्चा प्रोटेस्टेंट सिंह, जिसे अधर्मी फरमान से ठीक पहले दूसरी बार इकट्ठा किया जाता है ताकि वो ध्वज चिन्ह बन जाए जिसका उपयोग परमेश्वर अपने अन्य झुंड को बाबुल से बाहर बुलाने के लिए करता है, उसी काल में प्रकट होता है जब धर्मत्यागी रिपब्लिकन और प्रोटेस्टेंट सिंह एकजुट हो रहे हैं, आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं और इस प्रकार एक शरीर या एक मंदिर बन रहे हो जो पशु की प्रतिमा है। इसी समय परमेश्वर का मंदिर मसीह की प्रतिमा का रूप ले रहा है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास आया वो ये है, यहोवा के घर के द्वार पर खड़ा हो और वहां ये वचन घोषणा करके, हे यहूदा के सब लोगों जो यहोवा की उपासना करने इन द्वारों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, अपने मार्गों और अपने कामों को सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसने दूंगा। झूठी बातों पर भरोसा मत करो, ये कहते हुए यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर यही है। क्योंकि यदि तुम सचमुच अपने मार्गों और अपने कामों को सुधारो, यदि तुम एक मनुष्य और उसके पड़ोसी के बीच न्याय ठीक ठीक करो, यदि तुम परदेशी अनाथ और विधवा पर अत्याचार न करो और इस स्थान में निर्दोष का रक्त न बहाओ और अपने अहित के लिए दूसरे देवताओं के पीछे न चलो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में, उस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, युगानुयुग बसने दूंगा। देखो, तुम ऐसी झूठी बातों पर भरोसा करते हो जो लाभ नहीं पहुंचा सकते। क्या तुम चोरी करोगे, हत्या करोगे, व्यभिचार करोगे, झूठी शपथ खाओगे, बाल के लिए धूप जलाओगे और उन दूसरे देवताओं के पीछे चलोगे जिन्हें तुम नहीं जानते, और फिर आकर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है मेरे सामने खड़े होकर कहोगे, हमें इन सब घृणित कामों को करने की छूट मिली है? क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा बन गया है? देखो, मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। परंतु अब तुम शीलो में जो मेरा स्थान था, जहां मैंने पहले अपना नाम स्थापित किया था, वहां जाओ और देखो कि इसराइल मेरी प्रजा की दुष्टता के कारण मैंने उसके साथ क्या किया। और अब क्योंकि तुमने ये सब काम किए हैं, यहोवा कहता है, और मैं तुम्हारे पास बोलता रहा, भोर भोर उठकर बोलता रहा, परंतु तुमने नहीं सुना, और मैंने तुम्हें पुकारा पर तुमने उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैं इस भवन के साथ जो मेरे नाम से कहलाता है और जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और उस स्थान के साथ जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे पितरों को दिया, वही करूँगा जो मैंने शीलो के साथ किया, और मैं तुम्हें अपनी दृष्टि के सामने से निकाल दूंगा जैसे मैंने तुम्हारे सब भाइयों अर्थात इफ्राइम की सारी संतान को निकाल दिया। इसलिए तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना कर, न उनके लिए विलाप या प्रार्थना कर, न मेरे सामने मध्यस्थता कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू ये नहीं देखता कि वे यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों पर क्या करते हैं? यिर्मयाह 7:1-36।